The following is a class given by His Holiness Jaya Bhataka Swami on December 13th, 1993 in Patna.
प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के अस्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्राप्त जीवों की पूजा करते हैं जिसे देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग यही ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं।
Here Lord Krishna is giving transcendental knowledge.
यहाँ पर भगवान कृष्ण पारलौकिक ज्ञान की अनुभूति करा रहे हैं।
What is the purpose of life?
क्या इस जीवन का मकसद है?
In the previous verse, Krishna, Lord Krishna says that as all surrender unto Him, He rewards accordingly. Jayjata maang prapadyante tang sataiva bhajamyaham.
और इससे पहले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरी शरण में जिस अनुपात में आता है, मैं उसको उतना ही भजता हूँ।
So, those who approach Krishna in pure devotion, they are directly getting Krishna's mercy.
और जो भगवान कृष्ण की सच्ची निष्ठा से उपासना करते हैं, उनको भगवान कृष्ण की अनुकंपा मिलती है।
Those who approach the part of Krishna in the form of devas and great men,
जो भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र को फलस्वरूप देवी और देवता की पूजा करते हैं,
they only get a partial mercy.
उनको जो है सो उनका कृपा का भाग मिल पाता है।
Because those parts are holding a temporary position, they only give temporary fruit.
वो जो स्थिति देवी देवताओं की है वह क्षणिक है, और क्षण भर के लिए ही जो उनसे उपलब्धियां हम लोगों को मिलती हैं वो भी क्षण भंगुर है।
So, worshipping the devas is better than not doing any worship.
देवी और देवता की उपासना ये उस पक्ष में तो अच्छा है कि आदमी बिल्कुल ही नास्तिक हो और पूजा पाठ करे ही नहीं।
Is training people to do worship, training them to accept a higher power.
Yeah, लोगों में उस योग को प्राप्त कराता है जिससे कि हम पूजा अर्चना और उपासना की पद्धति में अपने आप को रम सके।
But better than that, then is the jnana where one gets moksha.
और उससे ऊपर की स्थिति है ज्ञान की प्राप्ति जिससे हमें मोक्ष का बोध होता है।
So this way, sometimes the worship of the devas is compared to the cotton.
इसलिए देवी और देवता का पूजा जो है सो उस कपास की उपासना का रूप है।
Cotton.
कपास.
And the ganamarg is compared to the lump of dirt.
और ज्ञान की योग से जो हम पूजा अर्चना करते हैं वह
नॉट पूजा अर्चना ज्ञान
ज्ञान योग से ज्ञान योग को हम लोग निकृष्ट मानते हैं।
नो इट्स लाइक कंपेयर्ड टू अ लंप ऑफ अर्थ
डर्ट अर्थ
अर्थ अर्थ
वो जो है तो वो भूमि का एक लोंदा समझा जाता है।
व्हिच इज हार्डर
जो कि कड़ा होता है
अ बॉल ऑफ कॉटन और बॉल ऑफ अर्थ
कौन सा वो अच्छा है जो कपास है या वो अर्थ है
ना अच्छा नहीं शक्ति है
शक्ति किसमें ज्यादा
शक्त
शक्त
इफ आई से दैट आई वांट टू ब्रेक दैट लंप ऑफ अर्थ विद द कॉटन आई टेक द कॉटन थ्रो ऑन द अर्थ विल इट ब्रेक द अर्थ
अगर जो हम लोग उस मिट्टी के लोंदे पर कपास से मारे तो क्या वो मिट्टी का लोंदा टूटेगा
ना भक्ति इज कंपेयर्ड टू द स्टोन
और भक्ति जो है सो वह पत्थर
If someone says that they will break the stone with a lump of earth, can they break the stone?
और अगर जो कोई कहता है कि मैं मट्टी से उस पत्थर को तोड़ दूंगा तो तोड़ सकता है क्या?
If they take the earth and smash it against the stone will break in little pieces.
अगर जो वह लेकर के मट्टी को और जोर से मारे पत्थर के ऊपर में तो क्या वह पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा कर सकेगा?
बिल्कुल ठीक द अर्थ विल ब्रेक इन लिटिल पीसेस
और वो मट्टी टुकड़ा टुकड़ा हो जाए
सो इट्स लाइक दैट इफ यू कंपेयर वन थिंग टू द नेक्स्ट इट मे बी बेटर
अगर जो हम लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं तो तो एक चीज हम लोगों को पता लगेगा कि अच्छा है.
But when you compare with the argument of bhakti yoga, this is the hardest, and nothing can break that.
और जब हम उसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं भक्ति योग के साथ, तो वो सबसे कड़ा है, वो कभी टूट नहीं सकता.
Rather than doing adharma is to do dharma.
अधर्म से बढ़िया है कि धर्म करना.
Within dharma there's various levels.
और धर्म के परिवेश में ही कई तरह की स्थितियां हैं.
So the karma is considered the lower level because that's simply giving temporary fruit.
इसलिए कर्म के माध्यम से हम लोग क्षण भंगुर क्षण भर की प्राप्ति सुख की कर सकते हैं, फल की प्राप्ति.
Better than that is considered jnana or knowledge, transcendental knowledge.
और उससे बढ़िया ज्ञान है जो हम लोगों को दिव्य ज्ञान की अनुभूति कराता है.
But jnana, one may also fall down from that position.
लेकिन ज्ञान योग से भी हमारे गिरने की स्थिति बनी रहती है.
But because even in jnana, one is not having the devotion for the Lord.
ज्ञान के माध्यम से भगवान के प्रति हमारी आसक्ति विलुप्त रहती है.
They only know what is material world and what is the spirit. They don't know about Bhagavan.
इस बात की जानकारी होती है कि ये भौतिक संसार है और यह स्पिरिट है, उसको भगवान के बारे में बोध ही नहीं है.
भगवान संबंध नहीं जानता,
भगवान के साथ संबंध का बोध ही नहीं होता.
सो भक्ति योगा is directly giving us the blessing of Lord Krishna.
Bhakti yoga se hame Bhagwan Krishna ki seedhe kripa milti hai.
But therefore it is considered to be the greatest of all the benedictions.
Isliye ye aur sabke tulna mein sabse bada Bhagwan ka vardaan hai.
Now say one, there's also another example. There was one big minister.
उदाहरण के बतौर एक बहुत बड़े मंत्री की बात हम कर रहे हैं.
He was offering a free house to anyone to stay in.
वह हर लोगों को एक घर मुफ्त में दे रहा था रहने के लिए.
Very good. 3-story building, air conditioning, heating, car park.
एक मकान था, उसमें एयर कंडीशनर लगी हुई थी, कार पार्किंग था, कार था.
टेलीविजन, फर्नीचर, हॉट एंड कोल्ड वाटर.
टेलीविजन, फर्नीचर, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब चीज की व्यवस्था थी.
यू कैन हैव इट फॉर फ्री.
और यह हर चीज मुफ्त था.
बट ओनली द ओनर इज कीपिंग वन कंडीशन.
और वो ये सिर्फ एक ही के ऊपर में उन्होंने शर्त लगाई.
दैट एनी टाइम डे और नाइट सम टेररिस्ट मे कम एंड किल यू.
और उन्होंने कहा था कि भाई तुम रहना है, रह लो, फ्री तो है, लेकिन रात दिन में कभी भी एक उग्रवादी आतंकवादी आएगा और तुम्हें मार लेगा.
बट अदरवाइज यू कैन लिव देयर एज़ लॉन्ग एज़ यू लाइक.
लेकिन अच्छा है जब तक तुम रह सको उसमें रह लो.
यू वांट दैट हाउस?
नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन दैट.
यू कैन बी पीसफुल इन दैट हाउस.
महाराज बोल रहे हैं कि कभी आप शांतिपूर्वक रह सकते
हैं, शांत रह. एक्चुअली वी आर लिविंग इन दैट हाउस नाउ.
सही माने में हम लोग जो है सो उसी तरह के घर में हम लोगों का निवास हो रहा है.
दिस बॉडी इज दैट हाउस.
और ये शरीर ही हमारा वह घर है.
एनी टाइम डे और नाइट वी कुड लीव दिस बॉडी.
और सुबह से शाम किसी भी वक्त हम लोग जो है तो इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा.
सो हाउ वी कैन हैव पीस?
इसलिए हम लोगों को शांति है कहाँ?
सो सम पीपल दे आर थिंकिंग दैट इफ आई गेट सम टेम्पररी थिंग देन आई हैव ऑल द पीस.
कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें क्षण भर के लिए जो सुख की अनुभूति और प्राप्ति होती है उससे ही हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है.
Yesterday I did program at one very big industrialist house in Bombay.
कल मैंने एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर में एक प्रोग्राम किया बम्बई में.
In one of the most famous of India, everyone knows his name.
और वो बहुत ही ख्याति प्राप्त उद्योगपति है जिसके नाम को हर लोग लगभग पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं.
He told me how In his family there was so much ashanti at one point, some years ago.
और उन्होंने बताया महाराज को कि किस तरह से उसके परिवार में पारिवारिक परिवेश में अशांति का वातावरण कुछ साल पहले बना हुआ था.
At that time also there was strike going on in the factory.
और उस वक्त जो है सो उनके फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही थी.
So many trouble all came at the same time.
और बहुत सारी विपत्तियां एक साथ आकर के उनको घेर ली.
Joint family broke up, everyone went separate, all brothers.
घर टूटने लगा, हर भाई अलग होने लगा.
So that time somehow he came in contact with Bhagavad Gita as it is.
और उस वक्त जो है सो उनका संपर्क हुआ भगवत गीता यथारूप से.
And with the devotees of Lord Krishna.
और भगवान के भक्त से.
So Sundari said that changed my life.
और उस क्षण ने ही मेरे जीवन को बदल दिया.
Now he is chanting Hare Krishna. Here his wife. They are both chanting. They have a nice temple of Krishna in their house.
अब जो है तो उनके घर में भगवान कृष्ण राधा रानी की एक बहुत अच्छी मंदिर है और वो उनकी पत्नी सब मिल करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया करते.
They understand that side by side as we are leading this life, we have to prepare ourselves for the spiritual life. We're going back to God.
वो ये अनुभूति और समझ आना बहुत जरूरी है. और वो समझते भी हैं कि एक तरफ वो भौतिक जीवन बिता रहे हैं, साथ साथ हमें आध्यात्मिक जीवन की तैयारी भी करनी है.
Otherwise, there is no peace in this world.
अगर जो हम इसके अलावा इस संसार में भौतिक संसार में कोई शांति है ही नहीं.
So, every deva has got their department.
हर देवता को एक एक विभाग मिला हुआ है.
If you go, just like every, there are so many ministers in government. Someone is food minister, someone is home minister, someone is finance minister.
ऐसे एक सरकार के तहत विभिन्न मंत्री परिषद हुआ करता है, विभिन्न मंत्री हुआ करते हैं. कोई व्यापार से, कोई खाद्य से अपना संपर्क रखता है.
How many ministers you have? 30-40 portfolio like that. There's 33 koti devata.
हम लोग जैसे 30-40 मंत्री मंडल में मंत्री हुआ करते हैं, उसी तरह से वहाँ 33 करोड़ देवता है.
33 करोड़ देवता.
Lot of position are there. You can also become a deva.
आप भी एक देवता हो सकते हैं.
If you do the punya long enough, you can get that birth as a deva.
और जब आपका पुण्य की यह प्रक्रिया काफी लंबे अर्थ तक चलती रहे तो आप भी देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं.
That's why Indra gets worried if some yogi is doing lot of tapasya, that maybe yogi will take his position. So he sent Apsara to break his meditation.
इंद्र की दुविधा ही यही है कि जब वह देखते हैं कि कोई योगी बहुत दिन तक अपनी तपस्या में सफल होने की कगार पर पहुंचता है तो वो अप्सराओं के माध्यम से उसकी योग को भंग करा
देते हैं. He is afraid that he may, the yogi may want to take his position.
उनकी दुविधा यह है कि वो योगी जो है तो कहीं इंद्रासन को प्राप्त न कर
दे. At the end, the question answer comment period is there. So, in this way, people are generally infatuated by these temporary blessings.
इस तरह से लोग जो है सो उनकी आसक्ति बढ़ते चली जाती है इस क्षण भंगुर फल की प्राप्ति से.
So the more intelligent people are those who want a permanent blessing.
जो ज्यादा बुद्धिमत्त हैं वो चाहते हैं कि उन्हें चिरस्थायी वरदान की प्राप्ति हो.
Krishna can give the permanent blessing because he is beyond this material world.
और वह एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है जो वो चिरस्थायी वरदान प्राप्त करा सकते हैं किसी को, क्योंकि वह इस भौतिक संसार से परे हैं.
All the devas, they're also within the material world.
सारे देवी देवता जो है सो इस भौतिक संसार के तहत हैं.
Normally human birth is meant to get out of the material world.
और हम लोगों को इस भौतिक शरीर की प्राप्ति होती है इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए.
But now human population is increasing.
लेकिन हम लोगों का यह जो आबादी है जनसंख्या बढ़ती जा रही है.
Because from animal they are coming after human, but human not getting moksha. So now Chaitanya Mahaprabhu has come to give special mercy so human being can get out in this Kali Yuga.
इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए और वह अपने उस वरदान के वसीभूत कर लोगों को इस कलयुग में इस भौतिक संसार से निकलने का प्रावधान बताया.
In the shastra it gives two main ways to get out of the material world, two para complementary ways.
शास्त्र में दो रास्ता दर्शाया गया है जिससे कि हम इस भौतिक शरीर
One is this is Kali Yuga.
और एक जो यह कलयुग में है.
No, in the Kali Yuga.
In Kali Yuga, इस कलयुग में.
One is the Harinam.
एक है हरिनाम.
The other is the Srimad Bhagavatam.
और दूसरा जो है वो श्रीमद् भागवतम.
These two are specially given for the conditioned souls of Kali Yuga.
इन दोनों के आश्रित होकर के ही हम यह बद्ध जीव जो है सो अपने मुक्ति का कारण हो सकते.
There's a story. Now once there was one man called Atmadeva, a Brahmana.
एक कहावत एक कहानी है जो इस तरह से है कि एक व्यक्ति हुआ करता था आत्मदेव नाम का.
He was a rich Brahmana.
वो बहुत ही अमीर ब्राह्मण था.
His wife name was Dunduli.
उनके पत्नी का नाम था Dunduli.
She was serving her husband very nicely.
और वो पतिव्रता नारी.
But sometimes she would be very dissatisfied and complain always.
लेकिन कभी कभी उन्हें जो है सो आत्मिक शांति नहीं मिलती थी इसलिए कुछ परेशानियां थी.
But the husband is living, he happy, he has a wife, even she complains sometimes.
और वो देख रही थी कि क्या जीवन है कि वो ठीक है दुल्हा भी है आराम की जिंदगी जी रही है लेकिन कल ये जीवन क्या है.
But in spite of having wealth, having family, he was not happy.
लेकिन सब कुछ होने के बावजूद कि परिवार भी था सौम्य समृद्धि हर कुछ रहते हुए भी वह अशांति का वातावरण बना हुआ था.
Because he had no son.
क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था.
He thought without son, what is the use of family life?
और वह यही सोचा करता था कि बिना एक पुत्र के प्राप्ति के इस परिवार का योग कौन सा योग.
So he was very frustrated.
तो वो बहुत ही क्षुब्ध था.
He went to the forest, he thought, let me commit suicide if I don't have a son, what is the use of life?
जंगल में जाकर उसने आत्महत्या करने की सोची. पुत्र नहीं है तो फिर यह जीवन किस तरह का जीवन है.
He met one sannyasi.
वह उनकी मुलाकात एक सन्यासी से.
The sannyasi asked, why you are so sad, what is wrong?
सन्यासी ने पूछा कहा कि तुम जो है सो इतना परेशान क्यों हो क्षुब्ध क्यों हो.
So I have no son. पुत्रहीन है माई तो पुत्रहीन है.
उसने कहा मैं पुत्रहीन
हूँ. सो व्हाट इज द यूज ऑफ लिविंग.
क्या फायदा है हमारे
जीवन. The sannyasi, some people without with son they also suffer. You should not be so attached to these things.
कुछ लोगों ने कहा कि भाई पुत्र रहते हुए भी लोग जो है सो काफी परेशान रहते हैं इसलिए फिर तुम इस पुत्र के लिए परेशान ही क्यों.
No, no, without son, I will not keep my life.
उन्होंने कहा कि बिना पुत्र के मैं इस जीवन को समाप्त.
So, the sannyasi saw he was very much affected, so he thought, let me have some mercy on him.
Sannyasi ने देखा कि यह बहुत पुत्रवत स्थिति को प्राप्त आया यह चेतन इस पर कुछ कृपा होनी चाहिए.
So he gave him one fruit.
इसलिए सन्यासी ने उसको एक फल.
Give this to your wife, she'll have a nice son. So he went back to his house. He told his wife what happened. Now we got a very good blessing. Now you take this fruit and then we can have a child. Today I am very happy. So he gave the fruit to his wife. He went off to take his bath. The wife, she wasn't happy. She thought, my husband gave me this fruit. So I have a child. But if I have a child, I'll get sick. Morning I'll get some sickness and vomiting feeling. Then my sister-in-law, she'll come and steal my things when I'm sick. This way I'll become very big and it'll be very uncomfortable walking and moving. Then the baby gets stuck coming out in that channel. I don't want to take this fruit. But if I don't take it, my husband will be angry with me. He wants a son. So I say, in this world no one can be happy anyway. No matter. So the lady, she wanted a child but she didn't want the suffering. In this world, to get anything, you have to also get the suffering. So the sister of that Dunduli, she said, all right, I'm actually pregnant now. I'll give you my child. You tell my husband and give him some money, he'll maybe give you my son. You tell your husband you're pregnant and at this time when I give birth, I'll give to you and you say this is yours, you won't know. So they made this plot. She told the husband, yes, yes, now I'm pregnant. And they fed that fruit to the cow. Then the sister had the baby. So then quickly gave and said, oh, look it. Oh, today I had birth. Here's the baby. Showed the husband. Oh, I'm happy. I got a son. He was giving out charity to all the people. Now he's a father. Then is that cow that was given the fruit, that one gave birth to also a boy.
And that cow
human?
A boy, human. I said, ladka.
I said, bacha. So, the people thought, look at that, the cow, even his house now, once he's giving birth, even the cows are giving birth to human. That means he's a very fortunate man. But that son from the cow had two, all human except ears are like this one, cow ear. So he was known as Gokarna. Because that blessing of the sannyasi was would not fail. So that's why either a cave cow or a cow gave birth. But that, so that boy that was the sister's boy that the lady presented as hers, they gave the name Dundukhari. But when he grew up, as he was growing, he was a very bad person. He would kill animals and make them suffer for pleasure. He would beat up the other children, cause them suffering. But Gokarna was a very good boy. He was always attracted to religious activities.
Legend Gokarna, adhyatmik vyakti tha, uska adhyatmik uski abhiruchiyan thi aur bahut acha manan karta.
So as that Dundukhari grew up, he was demanding money from his parents, so he'd go off and he'd drink wine and he'd do sinful activities.
Dundukhari jo hai to jab badh raha tha to wo apne mata pita se paisa manga karta tha.
Would abuse his parents and mistreat them. And the father, that Atma Deva, he thought that, I was so happy without a son. Now I have a bad son and I am suffering like anything. Then that Atmadeva, that Dundukhari, like that also he beat up his parents and took their money and even in this way, very unfortunate way they died. And Dundukhari, then he lived in the house of his father and he brought in prostitutes. He was living with five. Enjoying all his sense gratification. But they say, we want saris, we want this, bangles, jewels, so you have to give us. He had spent all the wealth of his father. So he went out and he robbed someone and took their wealth. And he brought back and then he gave for this satisfying these prostitutes. So So then prostitute said, now he's stealing. He'll get caught by the police sometime. Then we'll be put in trouble. Better we just finish him off. So in the night they made a plan, they'll kill him. When he was asleep, they tied him up. Then they tried to strangle him. But he woke up and it was very hard to kill him. So then finally they just cut him in pieces. And they put him in a well. And when people ask, where's that man? He said, oh, he went out a distant place to make money. He sold all the property and then they left. It says that in the world there's two kinds of women. One is a very pious religious woman, and they're always doing their proper thing according to Dharma. But those who have gone the adharma path, they can do anything. They have a very hard heart. So, when that Dandukari was killed like that by the prostitutes, he became a ghost. He went to his brother Gokarna and he took some horrible forms. Gokarna wondered, what are all these horrible, first coming like a big demon, then coming an elephant and a tiger? What is this? He started chanting some Narasimha mantras. So then that ghost took the form again of his brother and said, actually I'm your brother. I was killed like this, I become a ghost. You please save me from this hellish existence. So, but I just came back, I did Pindi Dan for you in Gaya. So how is it that you're still a ghost? He said, I was so sinful, you do 100 times Pindi, it won't be enough for me. You have to do something more powerful. So then Gokarna, he found out that the most powerful thing to do was to read the Srimad Bhagavatam. He started to read the Srimad Bhagavatam. And he invited many people, so many brahmanas and other sajjans, they came and to listen. And the ghost, he took a shelter in one bamboo.
सर्वभूत जो है सो एक पास में उसने अपने आप को स्थित किया.
Every day that Bhagavatam was being read, one of the gates of the bus blew up and exploded.
और भागवतम रोज भागवत की कथा चलने लगी और एक रोज ऐसा हुआ कि
वो
एक एक गिरा उसका जो है सो फटने लगा बस का.
At end of 7 days, that ghost was liberated from ghostly body.
और 7 रोज के बाद वह भूत जो है तो अपने भूत योनि से मुक्त हो गया.
And a special Viman came from Vaikunth to take him back.
और एक खास विमान वैकुंठ से आया जो उसको ले गया.
So he got a spiritual body.
फिर उसके बाद उन्हें एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति.
Other rishis and brahmanas said, why he is going and why we are not going.
वहाँ पर जितने ऋषि और ब्राह्मण थे वो कह रहे थे कि क्यों ये जा रहा है हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं.
You were here for 7 days also.
हम लोग भी यहाँ 7 रोज के लिए थे.
Said he was listening very carefully. You are not listening so carefully.
वो बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था और जो लोग थे उपस्थित वहाँ पर वो लोग बहुत ध्यान लगा के नहीं सुन रहे.
So then he took back that liberated ghost.
So वो विमान जो है सो उस भूत को लेकर के चला गया.
So all the brahmanas requested Gokarna, do one more time Bhagavat part. The time will listen more carefully.
सारे ब्राह्मण कहने लगे गोकर्ण से कि एक बार और ये भागवत कथा कह दो और हम लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे.
Again, after some time, he did the Bhagavat lectures.
Gokarna ne phir dobara ye Bhagavat katha kahi.
And then Krishna was so pleased by the lectures and everyone listening.
Aur Bhagwan Sri Krishna itne khush the us katha se aur logon ki dhyan purvak sunne se.
So Krishna, he personally appeared and he took all of them back to Golok Vrindavan.
भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है आए और सब लोगों को लेकर के वो लोग वृंदावन चले.
सीता गौर सीता विवारण
हरि हरि
गौर की. So in this world, if we take shelter of the Harinam and Srimad Bhagavatam, this will give us the most blessing.
अतः इस संसार में हरिनाम और श्रीमद भागवत की शरण हम लोग प्राप्त करें तो वो हम लोगों के लिए सबसे लाभप्रद चीज.
भागवत गीता इज प्रिपरेशन फॉर श्रीमद भागवत.
और भागवत गीता तैयारी है हम लोगों का श्रीमद भागवत के.
सो वी हैव द चॉइस व्हेदर वी वांट द इटर्नल हैप्पीनेस इटर्नल ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा और जस्ट द टेम्पररी थिंग्स व्हिच विल कम एंड गो.
इसलिए हम लोगों के सामने में उद्देश्य बिल्कुल हमारा साफ होना चाहिए कि क्या हम भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र बने जो हमारे सनातन खुशी को प्राप्त कराए हमें मुक्त कराए या हम इस भौतिक संसार में लिप्त रहे.
हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Who wants to be born again and again in the cycle of reincarnation, sometime as animal, sometime as human, sometime as deva?
कौन कौन लोग जो है तो बराबर यह जन्म मृत्यु को प्राप्त करते रहना चाहता है. कभी मनुष्य कैसा कभी जानवर कैसा कभी.
Who wants to get the blessing of Lord Krishna and go back to the eternal abode of the Lord?
कौन कौन लोग चाहता है कि भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र बने और भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करे.
हरे कृष्णा हरे
कृष्णा.
So you're all devotees here, I see. So may Krishna bless all of you. The process is very easy. You have to book your ticket now.
अब जो है सो हम लोगों को तैयारी कर लेनी होगी और टिकट अभी जो है सो ही कटा लेना होगा. रास्ता सरल है.
Book the ticket by chanting Hare Krishna, by hearing the teachings of Krishna, and by worshipping Krishna.
और टिकट कटाया जा सकता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर उसकी शिक्षा को ग्रहण कर और
Sri Krishna upasana.
This
is Lord Chaitanya's instruction. Bhajo Krishna, Bholo Krishna, Koro Krishna Shika. Gita is the teaching of by Krishna and Bhagavad is teaching about Krishna.
Gita jo hai so ye shiksha hai Bhagwan Krishna ke dwara aur Bhagavatam jo hai so Krishna ke nimit wo shiksha hai.
Hare Krishna. Any question?
Jo piche ke gardiya ho chukiya jo bahar aa gaya to paida karta hai jo dusran ka se kaise.
He says ki all the mistakes that he has committed in past, the bad karma which is following him, how should he get rid of it?
Just like that Dundukari, he got all of his bad karma wiped away.
Theek usi tarah se jaise ki Dundukari apne paap se mukt ho gaya.
Theek usi tarah se chant Hare Krishna, you surrender to Krishna, Krishna says mokshaya that he'll protect you from all the sin. Sarva dharman paritya jamame kang sararang vaja ahantang sarva pape bhyo mukhisham masujaha. Sarva pape bhyo, all pap will protect you from. There's no other way to get free from your sin except for taking shelter of the Lord Krishna. When you do pious activity, that doesn't get rid of sin. Only by serving Krishna you can get free from all this
sin.
On this verse.
No, we were talking about ki to have the sun or to even to desire for that. It's maintaining on the bodily affliction. Yes, if he was desiring for a sun, eventually he had a bad sun and he had to suffer a lot. But then this varna and ashram within the grihastha ashram, it gives predominance of thinking of having and owning a son. Because Kardama Muni himself was restricted while he was retiring to forest by the Bhakti, that unless I am bestowed with a son, with all the daughters, you can't leave me and go away.
What's the question?
The question is to desire the son, which seems it goes in contravention to the teaching of the just now concluded class that of what use would be a son, because this Rishi was telling Atmadevki, why are you bothered about to have a son?
It's natural for the grihasthas to want a son. But he was trying to have son and he was not getting son. So he was so unhappy, he wanted to commit suicide because of no son. Confirm. This is an extreme case.
Yeah.
If someone doesn't get son, he should commit suicide. He was being over. Grihastha dharma means have children. But if one doesn't have children, then life go on. But we should, for devotional service, then you should try to have a Krishna conscious child. Just like one family disciple, they want to have a child, so just like Kardamuni, he did tapasya to get a good child. One Mataji is in Mayapur now for 1 month chanting 50 rounds a day, doing tapasya to get a good child. Since she's going to try to have a child, she wants that. Should we get blessing from Krishna to have a good child?
Child might bring in daughter also, Maharaj.
Child, whatever. Son, child. She's doing the tapasya, not the husband, so we can say. What will come? You can bless her to have a boy. She wants to have a devotee child. If you think that you have a child, you'll get in happiness. That's my idea. If you think I have a child, let me train my child to be a devotee and liberate that child. This is a proper thing. The right people that the child that will give happiness may also give suffering in material life. So you try, the grihastha, they try to have a, they pray to Krishna to give a child who can become a liberated soul, who can be a boon to the family for spiritual advancement. They also try to train that child. So that's being done as a service to Krishna. Krishna says in Gita, Dharma Abhirudha Maitun Aham.
Like that also. Putra means pu is hell, tra is to deliver, tran. You have your tran mantra, putra. It's not difficult Sanskrit. That's why the son should go and do the srat. He may not be a pure devotee, if he's just a pious man, he'll do srat that can save his father from hell. But if he's a sinning person, he won't also do srat. Then what is it? That was one devotee of Chaitanya Mahaprabhu. His son died. So he was lamenting. He was crying actually, and the deity asked, why you are sad? Because my son died. But I'm here, I'm also your son. No, but my son, when I die, he'll save me from this hell. He'll do srat for me. Now I have no son who will do the srat. So then the Gopinath deity said, alright, when you die, I will do the srat for you. You don't lament. So then after that, now that deity, every year they take the deity to the samadhi of this devotee, and the deity is doing the srat ceremony. And they say some miracles happen also. But for one moment, that black deity turns white. If you train your children up in dharma, at least they'll do the srat. That will save you from hell. If you train them to be a bhakta, they'll save you from samsara.